سمن، جس طرح کہ ہم نے اعلان بھی کیا تھا اور آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہم کرونا وائرس پر جو ہے اسپیشل پروگرام پچھلے 4 ہفتے سے کر رہے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک سے جتنے دانشور یا ڈاکٹرز ہیں یا ڈنمارک سے جتنے ڈاکٹرز یا سیاستدان ہیں ان سے بات چیت ہوتی رہتی، آج بھی اسپیشل پروگرام، آج بھی ڈنمارک سے سیاستدانوں سے بات کریں گے، پارلیمنٹ کے ممبران سے بات کریں گے۔ جس طرح ہم نے صبح بتایا تھا کہ ایک ہمارے بہت ہی پیارے تھنک ٹینک ہے، لیکن میں تھنک ٹینک اس لیے ان کا تعارف اس نظریے سے نہیں کراتا، لیکن جو ان کی پہچان ہے، ان کی پہچان ہے، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ایک مجاہد ہیں جنہیں ساری زندگی جو ہے لوگ دلوں سے نکال نہیں سکتے، کسی بھی مجاہد کو کوئی دلوں سے نکال نہیں سکتا، لیکن جنرل گل امید صاحب کا نام ایک ایسا نام ہے جو ہر دور میں ان کی کہی ہوئی باتیں جو ہیں وہ بالکل تاریخ کے جو دہراتی ہے، کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، لوگوں کے انٹرویوز، لوگوں کی باتیں اپنے آپ کو دہراتی ہیں اور دنیا میں وہ سچ ثابت ہوتی ہیں۔ ان کے صاحبزادے بھی کشمیر پر، کرونا وائرس پر، حکومت کی معاملات پر، ہر طرح سے وہ اپنا حصہ اپنے والد صاحب کی طرف سے، اپنی والدہ کی طرف سے جو کچھ ان کو ملا ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، آئے دن ٹی وی پر، آئے دن اخبارات میں ان کے آرٹیکل چھپتے رہتے ہیں۔ تو سمجھ، ہم نے کہا کہ ان کا یہ قیمتی ٹائم تھوڑا سا آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اس وقت وہ پاکستان کی فضاؤں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ گل صاحب، ایک بار پھر ہم آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔
السلام علیکم راجہ غفور صاحب اور تمام ہمارے سننے والے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سب کو محفوظ رکھے ہر قسم کی آفت اور بلا سے۔
عبداللہ گل صاحب، یہاں تو اللہ کا شکر ہے، لیکن پھر بھی کا پیشنٹ ہیں، تعداد ہے، اور حکومتی جو ہے اقدامات بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیے جا رہے ہیں، علماء بھی تعاون کر رہے ہیں، کمیونٹی بھی تعاون کر رہی ہے، تو الحمدللہ اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے، ہدایات بھی مل رہی ہیں کہ آپ گھروں میں رہیں، جتنی زیادہ آپ احتیاط کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے فاصلے پہ رہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کا کشمیر پر آپ نے شیلڈز تقسیم کی کرونا وائرس کے بارے میں اور حکومتی اقدامات کے بارے میں، میں چاہوں گا آپ کیا اس کو کس طرح انالائز کریں گے۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ راجہ غفور صاحب۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ کہیں کرونا کی وجہ سے اور پہلے پھر حکومتی مسائل، جو مشکلات تھیں، جو سیاسی ایک دوسرے کے خلاف کھینچا تانی چل رہی تھی، اس کی بنیاد کے اوپر کشمیر کی جو تحریک تھی اور جو کشمیر کا مقصد جو تھا اس کو کافی ضعف پہنچا، اور اس کی آڑ کے اندر، کرونا کے آڑ کے اندر، ہندوستان نے جو ہے متعدد ہم پہ کشمیر کے حوالے سے حملے کر ڈالے، اور جس کے اندر آپ نے خود محسوس کیا کہ ایک ڈومیسائل ایکٹ جو ہے وہ آ گیا، اس سے پہلے سٹیزن شپ ایکٹ آ گیا، پھر کشمیر کے اوپر لاک ڈاؤن جاری رہا، اور میں یہ پہلا شخص تھا غالباً دنیا میں جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کشمیر کے اوپر ہماری جو کرمنل خاموشی تھی، جس کو میں اگر کہوں کہ ہماری مجرمانہ خاموشی تھی، تو اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ان جن کی آنکھیں پیلٹ گن سے ضائع ہو گئیں، نابیناؤں کی، اور جو عورتیں بے آبرو ہو گئیں، اور جو جوان شہید کر دیے گئے، آخر ان کی آہیں جو تھیں وہ کہیں تو پہنچی ہوں گی نا، ہندوستان کے ٹارچر خانوں کے اندر سے وہ آوازیں کیا رب نے نہیں سنی؟ اور رب العالمین ہے وہ، وہ مسلمین صرف نہیں ہے، تو پھر اس نے پورے عالم کے اوپر لاک ڈاؤن کر دیا۔ یہ میں پہلا آدمی تھا جس نے یہ بولنا شروع کیا، جس کا اب کافی جگہ سے واویلا ہو رہا ہے، لیکن بہرحال مقصد یہ ہے کہ کشمیر کے اندر صورتحال جو ہے وہ بہت بگڑ رہی ہے، اور حد یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر کئی فنڈ قائم کیے گئے، اور دنیا میں اسی طرح سے متعدد مخیر حضرات نے جو ہے بہت فنڈنگ کی، لیکن آج ہمارے افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے سوشل میڈیا پہ بہت ساری یہ بات گردش کر رہی ہے کہ بڑے بڑے ٹاٹا، برلا، امبانی اور دیگر لوگوں نے جو ہے وہ بڑی بڑی ڈونیشنز دی کرونا کے حوالے سے، احسن اقدام ہے، لیکن کیا کشمیر کے لیے بھی کسی نے دی؟ کیا کشمیر جو ہے ہندوستان نے اس کو اگر اپنا ہی حصہ سمجھتا تو کیا اس کو وہاں کے لوگوں کا کوئی خیال ہے؟ کیا کشمیر کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ کرونا کا وہاں کیا سچویشن ہے؟ کسی کو کچھ بتایا نہیں جا رہا، اور لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے ان کے اوپر، ان کو کھانے پینے کی دشواری ہے، ان کے بچوں کا تقریباً ایک ایک سال جو ہے وہ ختم ہو گیا پڑھائی کے اندر۔ تو مقصد یہ ہے کہ اشیاء خورد و نوش کی جو ہے وہ وہاں تکلیف ہے، وہاں کی جو تحریک ہے اس کے لیے باقاعدہ جو ان کے انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ، اور ساتھ ان کی سیکیورٹی فورسز، وہ گھر گھر آپریشن کر کے ان تمام لوگوں کو جو گلی اور محلے کے اندر بھی کوئی ایک اپنا مقام رکھتے تھے بحیثیت ایک لیڈر کا، یا کوئی ایک توانا آواز تھے، یا منحنی سی آواز ہی کیوں نہ تھے، उन सब को जो है वो पकड़ पकड़ के दूसरे जेलों में, दूसरी जगहों के ऊपर या कत्ल करके उनको जो है वो मैस ग्रेव्स के अंदर डाला जा रहा है। ये एक बहुत खतरनाक सूरत हाल कश्मीर के अंदर डेवलप हो गई है। ऐसे खतरनाक सूरत हाल में जब पूरी दुनिया के अंदर एक मायूसी सी छाई हुई है, कश्मीर को लोगों ने फरामोश कर डाला। ये वक्त है जो कश्मीर के साथ खड़े हों, हमें ज़रूर कोरोना से भी लड़ना है लेकिन हमें अपने दुश्मन से भी लड़ना है। और कोरोना तो जब मारेगा मारेगा, फिलहाल तो जो दुश्मन हमारे लोगों को मार रहा है, जो हमारे लोगों को शहादतें हो रही हैं, जो उनको इज्तमाई आबरू रेजी जैसी शर्मनाक हरकत का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी सूरत हाल में जिंदा कौमें जो होती हैं वो बेगैरत होकर मर जाया करती हैं। और कौमें कभी भूख और अफलास और प्यास से नहीं मरती। ये बीमारी जो है ये अल्लाह की जानिब से है और अल्लाह ताला इसको ठीक कर देगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपको एक बात जरूर यहाँ, गो के ये इस मौजू की नहीं है लेकिन मैं जरूर बताऊंगा कि आप गौर फरमाएं कि अल्लाह ताला की जो इस टाइम पे अजाब है वो नाजिल हो चुका है। ये नाजिल हो नहीं रहा, हो चुका है। अगर दुनिया में आज 65,000 हलाकतें कोरोना की बायस हो चुकी हैं तो ये लम्हा फिक्रिया है, 12 लाख लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं। मकसद ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है। जब खुदाई तब अजाब देती है जब वो बिल्कुल नाराज हो जाती है, और चाहे वो मस्जिद हो, वो मंदिर हो, वो कलीसा हो, वो जमात खाना हो, या वो कोई गुरुद्वारा हो, अल्लाह ताला ने तमाम इबादतगाहें इंसानियत के लिए बंद कर दी हैं राजा साहब। तमाम पेशानियों को झुकने से इनकार कर दिया, अल्लाह उसका सजदा कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह का वक्त है और इस टाइम पे एक ही ज़ाते मुबारका है जो हमें इस अजाब से जो है, इस कहरे इलाही से जो है निजात दिलवा सकती है, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो पाक ज़ात है जो काली कमली सरकार और इसी तरीके से गुम्बद खिजरा से ही इंशाल्लाह ताला इसके अंदर कोई, अगर जो मैं कहूँगा कि गुम्बद खिजरा से ही कोई मेहरबानी हो जाए तो फिर मामला चलेगा, वरना जो है मैं नहीं समझता कि हमें जो है वो मामलात जो है वो किसी और नहज के ऊपर चले जाएंगे। खुदा ना खास्ता, ये वक्त बहुत खतरनाक है। सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन तशवीशनाक होती जा रही है। मिन हैसुल इंसानियत हमें जो है वो तौबा अस्तगफार करनी है, और हमें ये सोचना है कि हमने कश्मीर के ऊपर क्या खोया, क्या पाया, हमने कश्मीर पे कमज़ोरी क्यों दिखाई, हमने कश्मीर पे आंखें क्यों बंद रखी जब अल्लाह की इंसानियत वहाँ कत्लेआम हो रही थी, बेआबरू हो रही थी, हमने क्यों खामोशी इख्तियार की।
अब्दुल्ला गुल साहब, आप इस पर लेक्चर भी देते रहते हैं और अक्सर सेमिनार्स में भी जाते हैं और अपना काम भी करते हैं, कोरोना वायरस पर भी आपके आर्टिकल जो हैं वो छपते रहते हैं। हुकूमती इकदामात जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं, यहाँ तो हुकूमत ने एक पैकेज दिया है, 3 माह के लिए पैकेज दिया है कि आप काम पे जो नहीं जाना चाहता ना जाए, उसको तनख्वाह जो है उन्होंने एक पैकेज दिया है, नुकसान को भी और इंडस्ट्री को भी उन्होंने जो है फोकस किया है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर या वैसे अखबार में या टीवी पर बहुत सारी चीजें आती हैं कि ये हुकूमती इकदाम हैं, अपोजिशन और मजहबी जमातें और पब्लिक जो है वो सारी अलग-अलग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है और ये लम्हा फिक्रिया है यकीनन कि क्या वजह है कि लोगों का एतबार जो है वो कम हो गया है हुकूमत वक्त के ऊपर। जो भी मतलब माजी के अंदर भी हुकूमतें आई उन पे भी एतबार नहीं रहा और इस हुकूमत पे भी एतबार नहीं रह रहा। अभी हकीकत यह है कि आपको याद होगा कि आटे और जब इसका बहरान शुरू हुआ गंदम का, तो आपके साथ भी बात हुई, मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा और उसमें बताया कि कौन कौन लोग चले। उस टाइम पे लोगों ने मेरी बहुत जो है वो मुखालफत की और कहा कि आप तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन आज वो फिर साबित हो गया ना, हुकूमत ने कहा कि हाँ एक बात तो तय हो गई कि करप्शन हुई है। अब उसमें कौन कौन शख्सियात थी ये एक अलहदा बात है, लेकिन करप्शन का तो जो है एतराफ़ हो गया ना। आज ना ही यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है मरकज में, ना ही किसी और जमात की है, आज जो लोग हैं उनका तो मौजूद है। और फिर सेहत और तालीम के हवाले से माजी की हकूमतों ने तो जो गलत किया वो तो हम तस्लीम करते हैं, तभी तो हम मौजूदा हकूमत को लेके आए थे, लेकिन 3% पिछली दफ़ा का बजट रखा गया तो ये सेहत और तालीम के हवाले से, तो क्या ये 3% तो माजी में भी 3% था, तो फ़र्क क्या पड़ा? मसला यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे अभी अच्छी तरीके से पता है और मैं इस पर राजा साहब तहकीकात कर रहा हूँ। अभी कोरोना किट्स जो हैं कोई 130,000 एक अमेरिका के करीब मुल्क है, कनाडा में नाम ले देता हूँ, कनाडा से 130,000 कोरोना किट्स जो हैं वो आनी थी और वो बहुत ही सस्ते दामों पे $8 के करीब जो है वो बिक रही थी और वो पाकिस्तान के लिए अभी तो बातचीत होती तो शायद वो मज़ीद सस्ती हो जाती। 130,000 के ऊपर एक हमारे साहब हैं, उन्होंने बाकायदा यहाँ जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे रबता किया है, एक मिनिस्टर साहब जो कि बहुत ही करते धरते हैं हर चीज़ के अंदर, आजकल बहुत चमक रहे हैं वो मिनिस्टर हैं, एडवाइज़र हैं, जो भी हैं, मतलब आप समझ जाएं, तो उन्होंने बाकायदा, मेरे पास इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग मौजूद है, उन्होंने कहा कि मैं दस्तखत करने के 2 करोड़ रुपया लूँगा और 2 करोड़ रुपया लेके उसके बाद उसको 8 से 18 हमने कैसे बनाना है ये आप हम पे छोड़ दें। उस शख्स ने, वो बेचारा अल्लाह वाला कोई नेक आदमी है, हाफिज़ कुरान है, उसने कहा कि जनाब मैं ऐसा काम नहीं करूँगा बिल्कुल भी। वो ये डील आप अंदाज़ा करें कि एक ऐसे वक्त में जब लोग जो है वो इस वबा से लुकमे अजल बन रहे हैं, आप जो है इस टाइम पे बिजनेस कर रहे हैं, इस टाइम पे जो एयरपोर्टों के ऊपर तमाम एयरपोर्ट्स जो हैं वो तो आपको पता है फेडरल हुकूमत के नीचे आते हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी जो होती है, और इसी तरीके से जो ताफ्तान के ऊपर हुआ उसमें 10,000 रुपया फी बंदा लेके छोड़ा गया, कोरोना फ्री का सर्टिफिकेट दिया गया और आज एक कोरोना का जो मरीज होता है उससे 59,000 लोग जो है मुतासिर होते हैं। ये मेरी रिसर्च नहीं है बल्कि ये लंदन यूनिवर्सिटी की रिसर्च जो है मैं आपको बता रहा हूँ। मकसद यह है कि आज इसीलिए दीनी जमातें जो है वो अपने तौर पर काम कर रही हैं। अभी टाइगर फोर्स का जिक्र आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मसला यह है कि क्या पोलियो टीमों के पास पूरा डेटा एक एक घर का मौजूद नहीं था? क्या जो कमिश्नरेट्स हैं क्या उनके पास डेटा मौजूद नहीं है? क्या नादरा के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है? क्या ये बेहतर नहीं था कि आज ईजी पैसा और दीगर जो मोबाइल बैंकिंग और दीगर इस किस्म की जो सहूलियात मॉडर्नाइजेशन के जरिए आ चुकी हैं, क्या घर घर पैसा पहुंचाया नहीं जा सकता था? मैंने एक कल ही मैंने जो है वो एक ट्वीट की थी जिसके अंदर ये कहा था कि टाइगर फोर्स का जो खर्चा है और जो उनका यूनिफॉर्म है कि ठीक है, क्योंकि ये अभी बहुत सारी बातें हैं, कोई कह रहे हैं कि जी वो वॉलंटियर होंगे बिल्कुल, और लेकिन हुकूमत जो उनके रोजाना का जो अखराजात हैं खाने पीने का और दीगर जो है वो देगी, तो उस हिसाब से अगर एक आदमी का 300 रुपए का खर्चा लगाएं तो वो 15 दिन में 4 अरब और 50 करोड़ रुपया बन जाता है। अगर 10 लाख टाइगर फोर्स हों, कल शाम तक जो है 7 लाख लोग रजिस्टर हो चुके थे उसके अंदर। अब कई लोगों का कहना यह भी है कि हुकूमत की गिरती हुई साख और जो मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो नौजवान जो बेरोजगारी का शिकार हुए हैं उनको ये एक इंसेंटिव देने की कोशिश की गई है ताकि एक नौजवानों का जत्था इनके साथ खड़ा हो जाए। तीसरी बात यह है कि आईने पाकिस्तान 73 के कानून के मुताबिक कोई भी फोर्स और जत्था जो है वो बनाने की इजाजत नहीं है। FSF जब बनी थी, भुट्टो साहब ने जब बनाई थी तो वो 1972 में बनाई थी। अब मसला यह है कि ये टाइगर फोर्स जो है उसके साथ जो है बाकायदा फुल ताउन करेंगी, तमाम जो कमिश्नरेट्स होंगे यानी कि हकूमती मशीनरी समेत अफवाज पाकिस्तान और पुलिस के, वो उनकी मुआवनत करेंगी, उनके कहने के ऊपर वो जाके छापे मारेंगी, उनको कहने पे जाके वो लोगों को मदद देंगी। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्या यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद हैं, वहाँ जाके आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं और उसके मुताबिक आप राशन जो है वो मिल जाए, क्या ये मुमकिन नहीं है? क्या प्राइवेट इदारे जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं, मेरी वेलफेयर अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे वाले साहब जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह ने बनाई थी सर्विस फॉर ऑल के नाम से, सफा के नाम से, तो वो काम कर रही है, इसी तरीके से दीगर ईदी काम कर रहे हैं, सैलानी काम कर रहा है, बहुत सारे और इस तरह के अखूवत है जो काम कर रही है, तो क्या उन लोगों को अभी तक उनका ही किरदार सामने आ रहा है ना, हकूमत का इस टाइम पे क्यों नहीं किरदार आ रहा? और इसी तरह से FIF है और जो फलाह इंसानियत फाउंडेशन है जमात इस्लामी की, बहुत फाल किरदार अदा कर रही है। कल रात ही मेरी सराजुल हक साहब से बात हुई है इस मामले पे। तो मकसद ये है कि ये मुल्क जिसके हमने बनाया, आज अफसोस की बात यह है ये 1300-1400 वेंटिलेटर टोटल थे हमारे पास मुल्क में 22 करोड़ की आबादी के अंदर। तो चले माजी में जो हुआ हुआ, इस बार तो अब नहीं है। अब तो देखे ना, बजट भी आ गए, मिनी बजट भी आ गए। मकसद इस वजह से लोगों का, जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि लोगों का ट्रस्ट इन बुनियाद की वजह पे जो है वो कम होना शुरू हो गया, जो कि एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। ये अच्छी बात नहीं है कि हुकूमत वक्त पे, रियासत पे आपका जो एक एहसास हो, जो आपका एक मान हो, वो टूटे। अफवाजे पाकिस्तान दिन रात जो है वो काम लगी हुई है। आप तो लॉकडाउन भी नहीं करना चाहते थे, मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज है इस बात की। लॉकडाउन के शदीद खिलाफ थे, अभी भी पार्शल लॉकडाउन है और अभी भी इन बातों के ऊपर सोचा जा रहा है कि 14 तारीख के बाद, 14 अप्रैल के बाद 15 तारीख को जो है वो खोल दिया जाए सारा कारोबार और चीजें। हकीकत यह है कि अगर ये खोल दिया गया तो अभी तक तो देखिए दो फर्क चीजें हैं। एक है वैक्सीन बनाना। वैक्सीन वो होती है जैसे पोलियो की, यानी कि बचपन जब बोलो पोलियो वैक्सीन लग जाती है तो अब पोलियो नहीं हो सकता। लेकिन जिसको पोलियो हो जाए उसका कोई इलाज नहीं है, आज भी नहीं है। वैक्सीन जो है वो इसी तरीके से आपकी इन्फ्लुएंजा की है आपको, लेकिन जब इन्फ्लुएंजा हो जाए तो उसकी वैक्सीन नहीं है। मकसद यह है कि आपका एक इलाज है और एक वैक्सीन है, प्रिवेंशन है। तो इलाज के लिए तो अभी ना वैक्सीन तैयार है ना इसका जो है वो रेमेडी तैयार है। तो कोरोना को आप कैसे निपटेंगे? आखिर हुकूमत क्यों नहीं सच बता रही लोगों को? क्या ये हकीकत नहीं है कि इस टाइम पे तमाम मीडिया हाउसेस को लोगों को सेल्फ क्वारंटीन के जो है तरीके सिखाने चाहिए, लोगों को बताना चाहिए है कि अगर उनके घर में खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो जाए तो फिर उसको कैसे डील किया जाएगा? मेरी जो एक कैलकुलेशन मैंने की है उसके मुताबिक तकरीबन 15,000 से 20,000 प्राइवेट और सिविल और दीगर जो हस्पताल हैं कराची के अंदर, जिसमें फौजी हस्पताल भी हैं, नेवल के भी हैं, दीगर कोस्ट गार्ड के भी हैं, वो शामिल करके तकरीबन 15,000 से 20,000 बेड्स जो हैं वो लोगों के लिए मौजूद हैं। तो फिर क्या हुकूमत सिंध पागल है कि वो एक्सपो सेंटर को 1200 बेड मजीद जो है वो बना रही है क्वारंटीन सेंटर के लिए? क्या पंजाब हुकूमत जो है जिसने अभी 500-500 के बेड के मुख्तलिफ जगहों पर बनाए हैं, जेहलम में और एक गालिबन दूसरी जगह के ऊपर, तो ये क्यों है? इसका मतलब है कि हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये मजीद फैल जाएगी और मामला जो है हजारों में नहीं बल्कि लाखों में चला जाएगा खुदा ना खास्ता। रिपोर्ट्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान बुरी तरीके से मुतासर हो सकता है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2 लाख के करीब जो है वो अमवात पाकिस्तान में मुमकिन हो सकती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही हैं। इसी तरीके से जो हमारी इकोनॉमी का जो हाल है वो जाहिर है पहले भी पतला था, लेकिन अब जो लोगों पे टैक्स लगाए गए, जो चीजें क्या गैसों के बिल के ऊपर अभी तक नहीं किया जा सकता, इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले जो है वो सेहत के शोबे के अंदर काम करना चाहिए था। जो इस टाइम पे सेहत के शोबे के लिए हमने लोगों से खैराती फंड जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिए। भाई रियासत का काम होता है कि वो एक फलाही रियासत, इस्लामी फलाही रियासत जो होती है, जिसका कॉन्सेप्ट बार बार रियासत मदीना की शक्ल में बताया जाता है, हर रोज बताया जाता है हमें, तो फिर वो रियासत मदीना के अंदर तो फलाह तो हुकूमत का काम है। दजला के अगर किनारे कुत्ता मरेगा तो खलीफा वक्त जो है उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। तो फिर हम किस तरफ जा रहे हैं? खुदारा आंखें खोलें, इस टाइम पे कौम को पहली बात है टीच करें कि हालात क्या हो रहे हैं, दूसरी बात यह है कि कौम की कफालत करें। क्या सिर्फ गरीब ही मुतासिर हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा? हजूर अमीर भी मुतासिर हो रहा है, गंदम की तैयार फसलें खड़ी हैं, उनको हाथ कौन लगाएगा, उनका जो है वो कौन कटाई करेगा, उनको कैसे संभाला जाएगा? उसके लिए क्या हुकूमत ने जो है अभी इकदाम किए हैं? अभी तक तो कोई इकदाम नहीं नजर आ रहे। जो अभी लोगों को इतने दिन हो गए हैं लॉकडाउन हुआ हुआ है, तकरीबन ये 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या अभी तक किसी को हुकूमत की तरफ से वो जो पैसे हैं वो मिलना शुरू हो गए हैं? किसको मिले हैं? तो मकसद ये है कि ऐसा नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं मैनेजेरियल प्रॉब्लम्स हैं, वो कोई और नहीं ठीक करेगा। अगर वजीर आजम साहब जो है अपनी टीम खुद सिलेक्ट नहीं करेंगे अच्छी, तो उसके लिए मैं तो रिस्पॉन्सिबल या राजा साहब तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। खुदारा वजीर आजम साहब होश के नाखून लें और उनको समझें कि उनके साथ जो टीम है वो एक इंतहाई नाकाबले एतबार भी है, करप्ट भी है और साथ ही साथ उनकी वफादार भी नहीं है और ना ही उनकी आइडियोलॉजी के साथ जो है वो उनकी आइडियोलॉजी मिलती है। इस टाइम पे अच्छे लोगों को साथ रखना पड़ेगा और पूरी दुनिया एक मेरे ख्याल में फौजी कमांड की तरफ बढ़ रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई और मुल्क हो। आप सबकी सूरत हाल देख लें, बर्तानिया में देख लें, दीगर इलाकों में, इटली में देख लें, स्पेन में देख लें, फौज ने कमांड संभाल ली है। और अगर इस वक्त जो है हमारे सियासतदानों ने मिल बैठ के इस कुदरती आफत से इकट्ठे होके ना निपटा तो मेरे ख्याल है नाम भी नहीं रहेगा दास्तानों में, खुदा ना खास्ता।
अब्दुल्ला गुल साहब, आपने इतनी तफसील से बताया, हर चीज़ बिल्कुल वाज़े हो चुकी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, हम नहीं कहते उनकी नीयत ठीक नहीं, उनकी नीयत बहुत अच्छी है, वो मुल्क के लिए करना चाहते हैं, लेकिन जो उनके वज़रा का अब जो नाम आया, उनकी टीम का नाम आया, ये जो चीनी में नाम आया, सब्सिडी में जो उनका नाम आया, तो कौम तो उनकी तरफ देख रही है। यकीन करें, अगर वज़ीर आज़म साहब इनको धक्के मार के अपनी काबीना से बाहर निकालें तो पूरी कौम उनके गले में हार डालेगी। वज़ीर आज़म के पास इतनी मजबूरियां क्या हैं जो इन किन लोगों को साथ रखा हुआ है?
देखिए, मजबूरियां जो हैं, यही तो मसला है कि अब क्या आपसे छुपाने वाली बात है, ये एक नेशनल गवर्नमेंट ही है असल में। कहीं से कोई आदमी पकड़ा, वो किसी तंजीम का है, वो उसका लीडर कहीं और बैठा हुआ है, उसका मकसद वहाँ तहरीक इंसाफ में आने का कुछ और था, उसकी आंखें जो हैं वो वजारत उज़्मा के मनसब के ऊपर लगी हुई हैं, दरमियान में आज के ग्रुप बने हुए हैं। कौन नहीं जानता कि जहांगीर खान तरीन साहब का एक अपना ग्रुप है, कौन नहीं जानता कि महमूद शाह महमूद कुरैशी का एक अपना ग्रुप है, कौन नहीं जानता कि अब उस्मान गुलजार साहब अपना ग्रुप बना रहे हैं, कौन है जो जिसने पाकिस्तान में वजीर आला पंजाब की जो है वो तारीफ की हो उस्मान गुलजार साहब की, कोई एक नाम पता चले सवाए वजीर आजम पाकिस्तान के जो बार बार ये कह रहे हैं, और वो किधर से चल रहा है? अगर पीर फकीरों पे और जो है वो मामलात चलेंगे, और अगर ये कह दिया जाएगा कि आप पहाड़ की चोटी से अगर उतरेंगे, मेरा भी मुंह क्या खुलवाते हैं राजा साहब, मैं फिर ऐसी फिर वो बातें हो जाती हैं, पहाड़ की चोटी से उतरेंगे तो फिर आपको जो है वो बहुत मुसीबत बन जाएगी, समुन्द्र के करीब अगर आप जाएंगे तो फिर आप जो है वो बहुत खतरे में पड़ जाएंगे, मतलब अंगूठी को लोगों की तरफ आप रखेंगे तो उससे आपके मुखालफीन की आवाज़ें दब जाएंगी। मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं दुआ कर सकता हूँ।
बिल्कुल, आपका इशारा जो है मैं समझ आ गया, हमारे सामान को समझ आ गया। छोटे से दो सवाल करूँगा अब्दुल्ला गुल साहब, यहाँ डेनिश जो हैं और पाकिस्तानी जो हैं, डेनमार्क के शहरी जो हैं वो पाकिस्तान में इस वजह से फंसे हुए हैं, फ़्लाइट्स बंद हैं। बुध को फ़्लाइट का ऐलान हुआ है और उसमें उन्होंने जो पहले लोग वहाँ गए हुए थे उसी टिकट पर वो आना चाहते हैं, लेकिन उस टिकट पर इजाज़त नहीं मिली कि आप नया टिकट खरीदें और उसके बाद यहाँ आएँ। आप देखें उन बेचारों का क्या कसूर है जिन्होंने पहले टिकट लिए हुए हैं, पहले वो फंसे हुए हैं, उनसे दोबारा ये रकम वसूल की जा रही है, उसके बाद जहाज़ यहाँ से खाली जाएगा। जहाँ तक मेरी मालूमात है पाकिस्तान एम्बेसी यहाँ बड़ा अच्छा रोल अदा कर रही है, और मैं खासकर तारीफ करूँगा यहाँ के जो अकाउंट्स के हैं आसिफ साहब, उनकी स्पेशल तारीफ करूंगा, और मिस इस्मत की तारीफ करूंगा कि ये मेहनत कर रहे हैं, कोई ना कोई चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, कम्युनिटी को, कम्युनिटी फोरम ने भी अपील की थी, उनके साथ ही हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल चीजें भेज रहे हैं। तो जब ये जहाज खाली वापस जाएगा तो यहाँ से कोई अगर माल इकट्ठा हुआ है तो उसको वापस ले जाए, ये ओवरसीज की बात करते हैं, क्यों ओवरसीज को इस तरह जलीलो ख्वार किया जा रहा है?
देखें, मकसद ये है कि जलीलो ख्वार तो पूरी पाकिस्तानी कौम ही हो गई है, सच्ची जो बात है, और लोग जो है बस वो कुछ बेचारे कुछ अपने किए पे नादिम हैं, कुछ जो है वो अभी वो अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी वाली बात है। तो वो मकसद यह है कि वो आसिफ साहब हैं या इस्मत साहिबा हैं, मैं पहले तो उनको सलाम पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान की फ़ज़ाओं से, और दूसरी बात यह है कि अपनी एम्बेसी को अगर वो काम कर रहे हैं तो एम्बेसी को हम उनका हौसला बढ़ाते हैं। साथ ही साथ यह है कि जो आपने इशारा दिया है कि कुछ लोग अगर वहाँ कोई चीज़ भेजना चाहते हैं, पहली बात यह है कि जो पहले ही लुटे फुटे हैं, जो बेचारे परेशान हाल हैं, आप उनको नए टिकटों का करवा के, खुदारा ये तो अब फैसले होते हैं, हर फैसला इतना ताखीर से हो रहा है, हर फैसला इतना ताखीर से हो रहा है, चाहे इसके लिए किसी की जान चली जाए लेकिन फैसले ताखीर से हो रहे हैं, क्योंकि आप फैसला करना ही नहीं चाह रहे। मसला ये, यहाँ मैंने आपसे कहा अभी भी सियासत चल रही है, क्या ऐसे वक्त में हकूमत वक्त का ये काम नहीं बनता था कि वो तमाम ऑपोजिशन पार्टीज को साथ मिला के ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करती इस मामले पे? क्या कश्मीर के ऊपर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस आज तक हुई है? मुल्क टूट गया, लेकिन कश्मीर के ऊपर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। हम कब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे? अभी जो बेचारे हमारे भाई बहन जो भी लोग जो दियारे गैर से आए पाकिस्तान आए और उनके टिकट के पैसे अभी मतलब खुदा का खौफ कर लें कि ये उनके ऊपर पहले ही जुल्म हुआ, पहले ही वो अपने घर बार से दूर हैं, अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, अपने कारोबार के हवाले से जो है वो उनका कोई हाल नहीं रहा, वो आके अपने मुल्क में जो है वो धक्के खा रहे हैं। ये बड़ा मेरे ख्याल में लम्हा फिक्रिया, मैं इसके लिए ज़रूर आवाज़ बुलंद करूँगा, आपसे वादा करता हूँ। और दूसरी बात जो आपने बहुत अच्छी खूबसूरत कही कि जो लोग जहाज जब आना ही है तो उसमें कुछ अशिया चीज़ें आ जाएं जो लोगों के यहाँ फ़ायदा दे सकें, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ बहुत ही ऐसे इम्पॉर्टेंट लोग जो बस रिश्तेदार भी हो गए हैं, जो बहुत कुछ हो गए हैं, जो सब करते धरते हैं, वो ओवरसीज को भी देखते हैं, वो फलाना भी करते हैं, बस वो मैंने आपको बताया था ना कि अब जो है वो पैसे भी डायरेक्टली चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अब तो चांदी हुई भी है, जो टेंडर आ रहे हैं जो बाकी चीजों के ऊपर उन पे ठीक ठाक पैसा जो है वो कट लिया जा रहा है। सीधी सीधी बात मैंने आपको बता दी है।
अब्दुल्ला गुल साहब, आपने बताया, इशारों में जिक्र भी किया, जो वजीर बैठे हुए हैं हुकूमत वक्त को पता है, आपको पता है, हमारी जो एजेंसी हैं उनको पता है, मुझे समझ नहीं आती चोरों डाकू को क्यों जो कहते हैं एक वायरस की तरह पाला जाता है। यहाँ देखें, यहाँ की फर्स्ट सेक्रेटरी और जो अकाउंट्स के हैं आसिफ साहब वो काम कर रहे हैं, अम्बेसडर साहब की यहाँ ट्रांसफर हुई अभी तक यहाँ अम्बेसडर साहब यहाँ पहुँच नहीं सके, वो अगर तनख्वाह ले रहे, मुझे नहीं पता वो अम्बेसडर की तनख्वाह पाकिस्तान में बैठकर ले रहे हैं या कि नहीं ले रहे, अगर यहाँ अम्बेसी में अब्दुल्ला गुल साहब काम चल रहा है और बड़े अच्छे तरीके से काम चल रहा है तो फिर सफीर मोहतरम की जरूरत क्या है? यहीं प्रमोट किया कर दिया जाए, फर्स्ट सेक्रेटरी को अम्बेसडर बना दिया जाए, अकाउंट्स के आसिफ साहब को जो है फर्स्ट सेक्रेटरी बना दिया जाए, क्यों जो है डॉलर्स की शक्ल में हम अपना नुकसान मजीद करेंगे?
देखिये, तनख्वाह तो वो पहले दिन से ही ले रहे हैं, जिस दिन वो अम्बेसडर बन जाते हैं उस दिन से तनख्वाह शुरू हो जाती है कागजों में, ये आपको बात मैं वैसे ऑफिशियल बता रहा हूँ। जहां तक आपने का उसमें कुछ मेरे ख्याल में मसाइल होते हैं, जाहिर है सीनियोरिटी का भी मसला होता है, लेकिन ये तो हुकूमत वक्त किसी टाइम पे भी जा सकती है कि उनको एक्टिंग अम्बेसडर का चार्ज दिया जा सकता है, अगर वो पूरे अम्बेसडर नहीं तो एक्टिंग अम्बेसडर का तो चार्ज दिया जा सकता है ताकि वो खुल खेल के उनके जो दायरा इख्तियार जाहिर है बहैसियत फर्स्ट
है नहीं, एज एक्टिंग रोल अदा वो कर रही हैं, आज बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जहाँ जो एम्बेसडर्स होता है एम्बेसडर का एक अपना रोल होता है, अब जो इतने अखराजात होंगे उनका सामान आएगा फिर वो घर में सेट होंगे फिर वो आगे बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, तो ये सारा नुकसान जो है ओवरसीज के जो ज़रिए मुबादला का नुकसान होता है, हम अपना नुकसान मजीद नहीं करना चाहते।
ये देखिए, ये आपकी बात कोई ऐसी नहीं है जिससे मैं इत्तफाक ना रखता हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सब कुछ हो सकता है लेकिन डिसीजन किसने लेना है। देखिए, अब हम जब डिसीजन, हम तो ये हालत थी कि हमारे पहली जो तीन तकरीरें थी, हमने एक तो तकरीर सिंध के वजीर आला ने जब लॉकडाउन किया है तो क्या फौज की उसमें मर्जी शामिल नहीं थी? अभी मेरे से सीधी सीधी बात सुन लें फिर आप। जब सिंध में हुआ तो लॉकडाउन के लिए बकायदा कोर कमांडर साहब से कंसल्टेशन के बाद जो है मुराद अली शाह साहब ने वहां लॉकडाउन का ऐलान किया। मुराद अली शाह साहब ने 4 बजे खिताब करना था और वो मीडिया ने दिखाना था, 3:30 बजे हमारे वजीर आजम साहब जल्दी जल्दी खिताब कर दिए और उसमें मकसद ये था 7-8 मिनट की तकरीर के अंदर के लॉकडाउन गलत होता है। फिर उसके 2-3 दिन के बाद आपको लॉकडाउन करना पड़ा। किसने करवाया आपसे लॉकडाउन? आपका फैसला तो उसके बरक्स था और आज भी है। मकसद यह है कि आप लॉकडाउन, मैं मान रहा हूं जब इंसान का सर सलामत होगा तो वो कमा लेगा, अगर सर ही खत्म हो गया तो फिर कमाने जोगे कुछ नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है, किसी को भूखा नहीं मारता, वो रब है, वो सबको पालता है, वो क्यों हमारा ये यकीन अल्लाह की जात मुबारका पे से उठ रहा है खुदा ना खास्ता कि जी इंसान जो है वो देगा, क्या इंसान किसी को पालेगा? ये कब से जो है वो लोगों के वो मालिक हो गए और उनकी जो बताना शुरू हो गए कि वो ये अल्लाह की इंसानियत है, बड़ी जबरदस्त है, लोग बड़े अच्छे हैं, घरों में राशन लोगों को पहुंच रहा है, क्या यही बेहतर नहीं है कि लोगों को पैसे दे दिए जाए, लोगों को कुछ कर दिया जाए उनके? मैंने आपसे यूटिलिटी स्टोर का बताया, मैंने आपको जो है वो इस तरीके से दीगर ऑर्गेनाइजेशंस बताई, सब किया जा सकता है, सब किया जा सकता है। डेटा पूरा पाकिस्तान के ऊपर, हर चीज पाकिस्तान में टेलीफोन के ऊपर एक एक चीज वेरीफाई हो सकती है, तो फिर हमें क्या जरूरत है कि ये सारा काम इतना डिले करना? अभी यही आपका जो डेनमार्क का मसला है, क्यों डेनमार्क के अंदर क्यों नहीं अम्बेसी को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाता, کیوں نہیں جو ہے وہ امبیسڈر بنا دیا جاتا؟ کیا ضرورت ہے کہ ایک امبیسڈر جو اگر آئے نہیں پتہ نہیں اگلے 15 دن نہیں آئے 20 دن نہیں آئے اور جب وہ آئے تو پہلے 14 دن تو وہ کوارنٹین کے اندر چلا جائے گا؟ پتہ نہیں بھائی یہ فیصلے ابھی فیصلے اگر وقت پہ نہ کیے جائیں تو یاد رکھیں لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو آگے لے کے چلتا ہے، لیڈر وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کے پیچھے چلتا ہے۔ لی کوان یو جو تھا بہت زبردست پرائم منسٹر تھا ان کا سنگاپور کا، اینڈ لی کوان یو سیڈ کہ آئی ڈو ناٹ گیو دا پیپل واٹ دے وانٹ، آئی گیو دا پیپل واٹ دے نیڈ۔ میں لوگوں کو وہ نہیں دیتا جو ان کو چاہیے ہوتا ہے بلکہ میں لوگوں کو وہ دیتا ہوں جو ان کی ضرورت ہوتا ہے۔ یہ اب لیڈرشپ کے فیصلے ہیں نا جناب۔ ابھی لوگوں کی تدفین نہیں ہو رہی، لوگوں کو پیسے ڈالا جا رہا ہے، چھپائے جا رہے ہیں سارے حقائق، چھپائے جا رہے ہیں، اصلی فگرز نہیں بتائے جا رہے، صرف اور صرف تافتان سے وداؤٹ سکریننگ 65,000 لوگ جو ہے وہ آئے ہیں پاکستان میں، جو ایئرپورٹوں سے آئے ہیں وہ اس کے علاوہ۔ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، آپ میری، میں ہر بات پیچھے دلائل کے بغیر میں نہیں گفتگو کرتا، آپ کو علم ہے ہر ایئرپورٹ پہ یہ کام جاری تھا۔ اس وجہ سے پھر بعد میں پتا چلا تو انہوں نے جب وہ کرپشن کیسز سامنے آئے تو 3 جگہ ایئرپورٹ انہوں نے لاہور کراچی اور اسلام آباد صرف رہ دیا کہ لاہور کراچی اسلام آباد میں غیر ملکی جو ہے وہ وہاں سے آ سکیں گے، جو مطلب غیر ملکی فلائٹس ہیں۔ اس کے بعد وہاں پتا چلا وہاں بھی کرپشن جاری ہے تو پھر ایئرپورٹ پھر بعد میں، ہر چیز یعنی کہ ڈیلے کرو ڈیلے کرو ڈیلے کرو۔ آج تک کشمیر کا معاملہ ڈیلے کر دیا، آپ نے تو 27 ستمبر 2019 کو کہا تھا یو این جنرل اسمبلی کے اندر تقریر کر کہ اگر دنیا نے نہ کیا تو پھر میں اس کا فیصلہ کروں گا، اس کا بھر فیصلہ آج 27 ستمبر سے، یہ آج 5 اپریل۔
ساری باتیں دکھ کی ہیں، افسوس کی ہیں، اپنا ملک ہے بہت تکلیف ہوتی ہے، اپنے لوگوں کو پریشان دیکھتے ہیں تکلیف ہوتے ہیں۔ یہ جتنے سرمایہ دار ہیں، یہ جتنے لیڈر ہیں، سو کالڈ جو لیڈر، لیڈر تو نہیں ہے، سو کالڈ جو لیڈر ہیں، ہر کسی کو پتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہر جماعت کے جو ورکر ہیں وہ کیوں ایسے جو ہے وہ چور ڈاکوؤں کو برداشت کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا واقعی گروپنگ ہے، ان کے اپنے لوگ فالوورز ہیں اس لیے وہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی کے اگر اچھے ورکر ہیں، بہت مخلص لوگ ہیں، اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ وہ بہت زیادہ لائل ہے، لیکن ان چور ڈاکوؤں کو کیوں نہیں بگاتے؟ اور ایک آخر میں آپ سے چاہوں گا کہ یہاں ہماری کمیونٹی کو عبداللہ گل صاحب ایز اے نوجوان کیا پیغام دیں گے؟
دیکھیں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ احتساب کا عمل تو ہو چکا ہے، جو لوگ جانے تھے ملک سے باہر وہ چلے جا چکے ہیں، جن لوگوں کے کھاتے کلوز ہونے تھے ان کے کلوز ہو چکے ہیں، کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد کے اوپر۔ وہ وزیر اعظم صاحب، وہ بلکہ میں کہوں گا عمران خان صاحب، میں چاہتا ہوں کہ کہیں تلاش گمشدہ میں ہم ان کو نکالیں، جو الیکشن سے پہلے تھے، جو ہمارے دلوں کی دھڑکن تھے، جو ہمارے ارمانوں کی عکاسی کرتے تھے، کہیں ان سے ان کو ڈھونڈ کے لے آئیں۔ ابھی جو شخص ہیں وہ یقیناً ان کی شکل تو بالکل وہی ہے، لیکن ان کا جو عمل ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے، ان کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ ہم ان کو پسند کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور ہمیں اس گندے نظام سے جان چھڑوائیں۔ لیکن اگر وہ پرانی ہی ٹیم کے اوپر رہیں گے تو آئی ایم سوری، پھر وہ یہی ہے کہ آرکیسٹرا جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے لیکن ٹیون جو ہے وہ وہی سیم بج رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو میں اور پورے پاکستان کے لوگوں کو پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ یہ وقت جو ہے یہ اتحاد کا ہے، یہ گھبرانے کا، پریشان ہونے کا یا مایوسی کا شکار ہونے کا نہیں ہے۔ پہلی بات ہے اپنے رب سے رجوع کریں، دوسری بات یہ ہے کہ گنبد خضرا سے سفارش کروائیں، تیسری بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کو جانچنے کا وقت ہے۔ سوری ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، ہم نے تمام رنگ و نسل سے بالا تل ہو کے ہم نے ایک انسان کی حیثیت سے سوچنا ہے کہ بحیثیت انسان فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے انسانیت کو دیکھنا ہے اور اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ ہماری وفاداریاں قرآن سے اور ملک سے ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنے ملک کے وفادار نہیں ہیں تو ہم اپنے کسی لیڈر کے وفادار نہیں۔ ہمارا ملک ہے تو لیڈرشپ آئے گی جائے گی، نہیں پیدا ہو۔ اور مجھے بہت سارے آج یہاں سننے والے محسوس ہو رہے ہیں دل میں، جو پاکستان کے لیے مشعل راہ ہیں، جو آنے والی قیادت ہے، جو آنے والی پود ہے، نئی نسل ہے، میرے نوجوان لوگ، ان کو خدا کے لیے شخصیت پرستی سے باہر نکل آئیں اور آئیڈیالوجی جس کو ہم کہتے ہیں نظریات پرستی اس پہ رہیں. نظریات زندہ رہتے ہیں, شخصیات دنیا میں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. ہمارا ملک ایک عظیم تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا, ہم نے اس کی قدر نہیں کی. ہمیں اپنے اندر وہ اقبال کا شاہین بیدار کرنا پڑے گا جس کی پرواز قصر سلطانی کے گنبد پر نہیں بلکہ وہ بسیرا کرتا ہے پہاڑوں کی چٹانوں میں. ہمیں وہ شاہین بننا پڑے گا, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا پڑے گا. ہمیں جو ہے صحیح معنوں میں جو ہے وہ کتاب الہی کے اوپر یقین کے ساتھ, ہمیں اللہ کی ماننی ہے, صرف اللہ کو ماننا نہیں ہے بلکہ اللہ کی ماننی ہے. تو یہ وقت ہے انشاءاللہ تعالی. ایوری کرائسس کریٹس این اپورچونیٹی. ہر تاریخ رات کے بعد ایک خوشگوار صبح آپ کا منتظر ہوتی ہے. یہ کرونا بھی رہ جائے چلا جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا, لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کرونا کے جانے کے بعد کیا پھر ہم دست و گربان ہو جائیں گے؟ جو آج بھی ہم موجود ہیں, ہمارے بڑے ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ آپس میں چاہے مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھنا ہے, وہ چاہے اپوزیشن ہے چاہے وہ حکومتی پارٹی ہے. اس ٹائم پہ تمام ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں, کرپشن جو ہے اس کو جو ہے وہ دوام بخشا جا رہا ہے. یہ وقت جو ہے وہ ان چیزوں سے بالتر ہے. میں نوجوانوں سے یہی کہوں گا, اپنے لوگوں سے یہی کہوں گا کہ مایوس نہ ہوں. انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات جو ہے وہ کرم کرے گی, اور انشاءاللہ تعالی شاید یہ اب وہ لمحات آ پہنچے ہیں کہ جب ایک سسٹم جو ہے وہ موجودہ سیاسی ڈھانچہ جو ہے وہ کلیپس کرنے کو ہے اور ایک نیا سسٹم ایوالو کرنے کو ہے. انشاءاللہ تعالی اسی میں خیر ہوگی.
بالکل صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت قیمتی ٹائم ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کیا. آخر میں پاکستان زندہ باد.
پائندہ باد.
سامعین, یہ تھے عبداللہ گل صاحب.